ओम शांति। बाप दादा की मदद की मीठी यादें कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और साथ ही में स्वागत करते हैं आदरणीय ब्रजमोहन भाई साहब का भी। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीच में।
ओम शांति।
ओम शांति भाई साहब। भाई साहब, आपके द्वारा हमने अभी तक बहुत सारे बाप दादा की मदद की मीठी मीठी यादें जो आपने संजो के रखी हैं वो हम जान रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बाबा ने बहुत बड़े बड़े कार्य आपके द्वारा कराए हैं। तो क्या बाप दादा बड़े बड़े कार्य में मदद करते हैं जो हमको महसूस होता है कि ये हमारे बस में नहीं था, या छोटी छोटी मदद भी बाप दादा करते हैं जो हम एक्नॉलेज कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में? क्या ऐसा कोई अनुभव आपके पास है?
मेरा अनुभव ये है कि एक बार हम बाबा के बच्चे बन गए और हमने कह दिया मेरा बाबा,
जी
और बाबा ने स्वीकार कर लिया और कह दिया मेरे बच्चे। उसके बाद लाइफ लॉन्ग, छोटी बात हो या बड़ी बात हो, एक तो बाबा बच्चों का सम्मान रखते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए तो जितना सम्मानित एक ब्राह्मण होता है
जी
वो बाबा बच्चों का सम्मान कभी भी नीचे नहीं आने देते। दूसरे, बात बड़ी हो या छोटी हो, ऐसे लगता है कि बाबा हर वक्त हर परिस्थिति में हमारी मदद करते हैं।
जी
लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है, जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, कि आपने अपनी लाइफ में किसी बड़ी बात में जो आपके जीवन को असर करती है बाबा की श्रीमत मानी हो। एक बार वो अगर आपने किया हुआ है तो आप समझ लीजिए कि आपको बिल्कुल हर छोटी बड़ी बात में बाबा की मदद मिलेगी, चाहे वो आपके शरीर से संबंधित हो, मन से संबंधित हो, परिस्थितियों से संबंधित हो, व्यक्ति कोई भी बात हो। उसके हमारे अनुभव हैं
जी
वो, आज मैं आपको एक छोटा सा अनुभव सुनाता हूँ। पहली बात कि ये मुझे जो जो बाबा की ये स्पेशल एक प्रकार का मदद प्राप्त है, उसका कारण क्या है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जब मैं बाबा के पास मैं गया था अपना इम्तिहान पास करके, और मैं अपनी अलग से चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस करता था, ऑफिस खोला हुआ था
जी,
उस वक़्त बाबा ने मुझे कहा था, बच्चे तुम ये छोड़ दो और सरकारी नौकरी कर लो। तो मैंने एक सेकेंड नहीं लगाया सोचने में कि बाबा कह रहे हैं इसमें मेरा कल्याण है, प्रैक्टिस में मेरे प्रॉस्पेक्ट्स थे,
जी
तो मैंने उसको तुरंत छोड़ दिया। तो ये चीज़ मुझे मदद की कि बाबा का इसने पूरी तरह कहना माना। इसी प्रकार से जो मेरी बहुत बड़ी संसारिक तौर पे नौकरी थी, लेकिन जब बाबा ने कहा तुम छोड़ दो तो मैंने एक सेकंड में सोचा नहीं। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं।
जी
तो हुआ ये था कि मैं जो भी मेरी लाइफ में काम होते थे, तो मैं दो काम आ गए, बाबा का काम और कोई अन्य काम, चाहे वो लौकिक हो या सरकारी हो, मैं बाबा के काम को प्रेफरेंस देता था कि बाबा का काम पहले और बाकी बाद में, है ना। जैसे कहते हैं ना, ग्राहक और मौत का भरोसा नहीं है।
जी
तो मैं सोचता था बाबा का हुक्म है, उसको पालन करना मेरा परमो धर्म है। तो एक घटना तो ये है कि दिल्ली के पास एक जगह है, उसका नाम है मुजफ्फरनगर,
जी
मोदी नगर, मुजफ्फरनगर, छोटे छोटे शहर आते हैं। तो मैं जब भाखड़ा नंगल में जॉब करता था तो एक ट्रेन चलती थी दिल्ली से रात को 9 बजे के करीब, वो छोटे छोटे स्टेशन पर भी 3-3 मिनट रुकती थी, एक्सप्रेस ट्रेन थी, तो मुजफ्फरनगर में भी रुकती थी, लेकिन रात का वक़्त होता था, 9:30 चलती थी, वहाँ कोई 10:30 के करीब रात को पहुँचती थी, वो सुबह मॉर्निंग में वहाँ उतार, टर्मिनल स्टेशन उसका नंगल था।
जी
तो मुजफ्फरनगर में वहाँ एक बहन थी, उसकी ख़ास खूबी थी मेरा बाबा करती थी, मान लो उसकी उंगली कट गई तो भी मेरा बाबा उसका निश्चय बहुत था।
जी
तो उसने एक प्रोग्राम रखा, फर्स्ट टाइम पब्लिक प्रोग्राम प्रदर्शनी का रखा, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा प्रोग्राम था। तो उसने दिल्ली के कुछ भाई बहनों को बुलाया, फर्स्ट टाइम चलानी थी, बड़े बड़े ऑफिसर से मिलना होता है। अब मुझे भी कहा कि आप आ जाओ, प्रोग्राम जो है संडे को है, तो आप आ जाना, शनिवार को आ जाना रात को, संडे की रात को चले जाओ, चले जाना मंडे में जॉब कर लेना
जी।
तो मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ हम पहुँच गए तो सारा दिन सुबह से लेकर बहुत वहाँ नई नई सेवा थी, तो हमने वो सेवा करी, कई मजिस्ट्रेट आदि आदि से मिलते रहे संस्था का प्रभाव डालने के लिए। तो रात को मैं भोजन वगैरह प्रदर्शनी में ही भोजन का प्रबंध होता करके तो आ गया रेलवे स्टेशन पर। अब मुझे पता है वहाँ 3 मिनट ही गाड़ी खड़ी होनी है, रात का टाइम है, वहाँ प्लेटफार्म भी पूरा नहीं होता, एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, छोटा स्टेशन
जी।
आ गया सामान वगैरह लेकर और अब मैंने सोचा कि गाड़ी आएगी और उसने 3 मिनट रुकना है और मुझे रात का टाइम है, ऐसा डब्बे बंद होते हैं और लोग बैठे होते हैं, सोए तो नहीं होते
जी।
तो मैंने पहले सोचा कि मुझे इसमें सीट लेनी है और मैं कभी भी आज तक स्लीपिंग लेटे हुए के बगैर नहीं गया। नॉर्मली तो मैं एडवांस बुकिंग कर लेता हूँ आने की जाने की, क्योंकि नौकरी का मामला होता है तो वहाँ तो छोटा स्टेशन था, कोई एडवांस बुकिंग के लिए कोटा भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं खड़ा हो जाऊँगा एक जगह पर, जो डब्बा मेरे सामने आएगा उसी में मैं चढ़ूँगा।
तो आपके पास उस ट्रेन की पहले से कोई रिजर्व टिकट नहीं थी?
नहीं नहीं, उसमें वहाँ रिजर्वेशन का था ही नहीं ना। 3 मिनट जहाँ गाड़ी रुकती है वो तो बड़े बड़े स्टेशन पर कोटा रखते हैं, रिजर्वेशन रखते हैं। अगर किसी को जाना हो तो उसके नियरेस्ट बड़े स्टेशन पर जाके रिजर्वेशन करा सकता। तो वो तो छोटा सा स्टेशन था भाई, किसी ने उतरना हो चढ़ना हो बस इतना ही, अनरिजर्व्ड डिब्बा। तो मैं खड़ा हो गया, सोचा कि एक जो मेरे सामने डिब्बा आएगा उसी में मैं चढ़ूँगा, हिलूँगा जुलूँगा नहीं, और आगे बाबा का काम है। तो जी वो आई ट्रेन फटाफट, तो पहले तो हल्का सा मेरे मन में आया कि देखूं, फिर मैंने कहा नहीं, मुझे दृढ़ रहना है, एक टांग पे खड़े होके जाना पड़ेगा, मैं जाऊँगा पर मैंने हिलना नहीं, उसी डब्बे के आगे उसमें चढ़ना। तो डिब्बा आ गया गेट के आगे, मैं अंदर चढ़ा तो उसमें कैबिन होते हैं छोटे छोटे 3-4, तो रात के 10:30 बजे थे तो खचाखच भरा हुआ था और लोग सिगरेट पी रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और जो स्लीपिंग वाले नीचे वाले में तो कोई लेटने का देता ही नहीं, ऊपर वाले जो होते थे बर्थ उसमें लोग लेटे हुए, जिसने आया जिसने संभाला होगा संभाल लिया होगा।
तो ये जनरल डब्बा था भाई साहब? जनरल डब्बा था।
तो हम उसमें चढ़े, क्योंकि रिजर्वेशन में तो मौका ही नहीं है, हम उसमें चढ़े और पहले कैबिन में देखा तो भी वैसा ही था, साइड में लोग बैठे हैं, कोई खा रहा है कोई पढ़ रहा है। अच्छा, दूसरे में गया तो भी कोई नहीं था। अब तीसरा कैबिन था, तीसरा या चौथा, तो मैंने मन में सोचा कि मुझे हठ नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे हठ का ये ज्ञान नहीं है, खामखा मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, ठीक है मैं चढ़ गया हूँ, सेवा हो गई है, थोड़ी थकान है, ठीक हो जाएगी। तो बिल्कुल मैं जब उस लास्ट डब्बे में जाके खड़ा हुआ, बैठने की भी जगह नहीं, तो एक व्यक्ति जो ऊपर की सीट पर लेटा हुआ था
जी।
उसने अपना कंबल वगैरह रोल किया और उतर गया, और मैं उतर गया, उसको वहाँ उतरना था, शायद इतनी देर वो रुका रहा, कुछ मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन वो मैं वहीं खड़ा था जहाँ से वो उतरा, तो मैंने उस सीट पर अपना कंबल रख दिया
जी।
तो मुझे वो सीट मिल गई और मुझे आंसू आए। मैंने सोचा कि देखो कि खचाखच भरा हुआ डब्बा है, फुल भरा हुआ है, इस आदमी को किसने रोका कि भाई तुम इस वक्त तब उतर जब वो आ जाएगा, वरना अगर पहले उतर जाता तो कोई दूसरा सीट पे लेट जाता।
और स्टेशन भी वही था मुजफ्फरनगर का ही।
तो मुझे आंसू आए कि देखो बाबा, आपने ऐसी परिस्थिति में भी मुझे लेट कर जाने का ही मेरे को मौका दिया, तो ये क्या चीज़ है। इसलिए आप देखेंगे कि बाबा अपने बच्चों को जिस तरीके से वो रहते हुए आए हैं, चाहे वो जॉब करते हैं, तो उससे बढ़िया ही रखेगा, उससे कम नहीं रखेगा।
तो एक तो भाई साहब बाप दादा की मदद इसमें थी कहीं ना कहीं, फिर एक तरफ जो हमारे पुण्य कर्म होते हैं या हमने सेवा करके आए हैं, बाबा की हमने सेवा की है, वो वीकेंड जैसे आपने बताया था वीकेंड में वहाँ पे बहुत सेवा किया करते थे, तो कहीं ना कहीं हमने बाबा की बात को प्रायोरिटी पे रखा तो हमारे कर्मों की भी मदद मिलती है उसमें।
कर्मों की मदद मिलती है, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरह की चीज़ है।
जी
कर्मों की मदद तो मिलती है, नहीं तो मुझे प्रेरणा ही ना आए कि मैं जाऊँ वहाँ सेवा करूँ। एक दिन है रात को, रात का ट्रेवल करके वहाँ जाऊँ, फिर अगले दिन रात का ट्रेवल करके वहाँ से आऊँ, तो क्या ज़रूरत है, थक जाएंगे, ऑफिसर हैं ना। वो बाबा की सेवा सामने है और कुछ नहीं, और हम तैयार हैं, अगर हमें खड़े होकर भी जाना पड़ जाएगा जाएंगे, पर बाबा खड़े होने नहीं देता। आप कहेंगे ये तो कभी कभी हो जाता है, इससे भी ज़्यादा जो कि बिल्कुल व्यक्ति को एक तरह से चुकन्ना कर दे, इससे भी ज़्यादा इसी प्रकार की ट्रेन में सीट मिलने की घटना है। ये छोटी लेकिन कितनी इम्पोर्टेंट है
जी।
तो पटना बिहार में है, तो वहाँ एक बहुत बड़ा मेला था, क्योंकि समय के साथ साथ हमारे फंक्शन बड़े हो जाते होते जाते थे, तो कई ऐसे फंक्शन होते थे जो होते स्टेट में थे, कैपिटल सिटी में होते थे, लेकिन वहाँ भारत भर से जो भाई बहन होते थे, जो बहुत सेवाधारी होते थे, वो वहाँ जाते थे
जी।
क्योंकि कोई बड़ा व्यक्ति उस वक्त शायद चीफ मिनिस्टर ने उसका उद्घाटन किया था, तो होता है और भी लोग आते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल जाते हैं, तो इतने सारे भाई बहन चाहिए जो एक एक को मिल करके संस्था के ज्ञान को अच्छी तरह समझा सके। तो मैंने पहले से फिक्स किया हुआ था कि मैंने वहाँ जाना है, दो दिन रहना है क्योंकि जॉब था, और दो दिन के बाद आना है, तो एडवांस बुकिंग मैंने करा रखे थे, रिजर्वेशन
जी।
अच्छा, जब बिल्कुल मेरे जाने का समय नज़दीक आ गया तो मुझे, मेरी माता मथुरा में रहती थी, बुज़ुर्ग थी, और मैं उनका अकेला बेटा था, तो आगे आके माता जी बीमार हैं। अब मेरे आगे दो क्वेश्चन हो गए, बाबा की सेवा है जो मेरी प्रायोरिटी है, माता जी बीमार हैं। अब उसमें ये होता है कि मान लो उनको कुछ हो जाए तो सारे ब्राह्मण परिवार में एक रॉन्ग सिग्नल चले जाता है, ये लोग अपने माँ बाप का ख्याल नहीं करते, वहाँ सेवा में चले गए, देखो माता को किसी ने पूछा ही नहीं, ऐसा करते हैं
जी। वैसे बाबा कहते भी हैं कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हमें ज़रूर निभाना है।
तो माता भी सेंटर पे रहती थी, वैसे मथुरा के सेंटर पे रहती थी
जी।
तो मैंने ऐसी दुविधा के मौके में, उन दिनों संदेश पुत्रियाँ ध्यान में जाती थी, तो मैंने बहन जी को कहा, मोहिनी बहन को, कि मैं तो जा रहा हूँ पटना, लेकिन बाबा से पूछ लो कि मेरी माता को कोई ऐसा खतरा वतरा तो नहीं है, ताकि मैं फिर चेंज कर लूँ। तो उसने कहा, बाबा कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो मेरी तो तसल्ली हो गई।
तो भाई साहब उस समय इतना सहज था संदेश बाबा से लेना।
हाँ, क्योंकि उस वक्त तो संदेश पर ही चलते थे ना
जी।
या तो बाबा, ब्रह्मा बाबा के डायरेक्शन पर, और जब ब्रह्मा बाबा नहीं है तो संदेश पर ही चलेंगे ना
जी।
तो बहुत एक्यूरेट संदेश पुत्रे होते थे। बाद में तो सिस्टम बंद कर दिया गया कि यज्ञ में एक ही ऑफिशियल माउंट आबू में संदेशी रहेगी, क्योंकि कई लोग फिर मिक्स संदेशे लाने लग जाते हैं, मोटिवेटेड या इस तरह के होते हैं जिसमें न्यूट्रल नहीं होता। पर मोहिनी बहन एक यज्ञ की पुरानी संदेशी थी, और फॉर्चुनेटली वो मेरे ही सेंटर पर रहती थी
जी।
तो उन्होंने ये कहा कि देखो भाई, ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं तुम पटना में एक दिन रहो और आती बार माता से मिलकर आ जाओ। ये बाबा ने इंस्ट्रक्शन दे दिया
जी।
अच्छा, तो अब इसमें कैच क्या था कि मेरी रिजर्वेशन नेक्स्ट डे की थी वापसी की, और मुझे प्रीवियस डे को ही चलना था, मतलब मैं अनरिजर्व्ड हो गया। तो मैंने पटना में ओपनिंग वाले दिन अच्छी सेवा की, सबको पता था इसको वापस जाना है, तो वहाँ हमारे बहुत स्थान स्थान के डिपार्टमेंटल एक्सपर्ट भी थे। तो एक हमारे ओम प्रकाश भाई जी थे जो रेल माउंट आबू में रहते थे, और रेलवेज की रिजर्वेशन सारे इंडिया की वही करवाते थे और बड़े एक्सपर्ट थे. उनको पता था किस मौके पर कैसे, अगर स्टेशन किसी की नहीं भी है तो स्टेशन पर जाके वो सीट दिलवा देते थे, क्योंकि हमारे कई विदेशी आबू आते थे तो वो कईयों की होता है पासपोर्ट नहीं है कुछ है, वो एक्सपर्ट थे. तो उन्होंने मुझे कहा कोई आप बिल्कुल मैं बैठा हूँ, हम आपको ले जाएंगे. मैंने कहा कोई बात नहीं, वो तो ड्रामा में मेरा बन गया. तो मैं पूरा करके वहाँ से एक तूफान मेल गाड़ी आती थी, सारी गाड़ियाँ वाया आगरा मथुरा भी नहीं आती थी, एक्सप्रेस वेज थे. तो एक गाड़ी थी जिसका नाम तूफान मेल था, तो वो वाया मथुरा आगरा दिल्ली आती थी, वही मुझे सूट करती थी
जी.
तो उसमें हमें वो ले गए. अब सीन क्या था कि पटना के स्टेशन पर जिसको कहते हैं ना, वहाँ लॉलेसनेस बहुत है उस वक्त तो थी, अभी भी है
जी.
तो वहाँ स्टेशन पर सारे लोग जो ट्रेन आती थी वो अपनी खिड़कियाँ बंद कर लेते थे, दरवाजे बंद कर लेते, किसी को लोग पीटते रहते थे, दरवाज़ा ना चढ़ने देते थे ना उतरने देते थे. यहाँ तक कि टीटी भी जो अंदर होता था वो भी गायब हो जाता था डब्बे से, इतना डर था मारपीट का. अच्छा तो भाई मुझे ले गए, वो गाड़ी आई, पहले तो कोई खोलता ही नहीं
जी.
अच्छा एक डब्बे के आगे में मुझे ले गए और उन्होंने ठोक ठोक के खूब कहा, बहुत सारे इकट्ठे हुए थे खिड़की से झाँक कर. आखिर गाड़ी चलने में एक मिनट पहले किसी ने वो दरवाज़ा खोला
जी.
और मुझे उन्होंने अंदर धकेल दिया कि तुम चढ़ तो जाओ, वो ऐसे करके चले गए
जी.
अच्छा मैंने कहा चलो ट्रेन में तो बैठ गए. अब वो बिल्कुल गेट के पास ही वहाँ टॉयलेट होता है, वहाँ मैं खड़ा हो गया तो एक माता और अपने बच्चे को लिए हुए वहीं खड़ी थी. तो जब गाड़ी चली तो मैंने कहा बहन जी आपके पास टिकट नहीं है क्या? कहती नहीं नहीं मेरी तो रिजर्वेशन है
जी.
लेकिन टीटी आता नहीं यहाँ, वो अगले स्टेशन पर आएगा, टीटी डरते हैं इसलिए मैं खड़ी हूँ, तो आएगा टीटी तो मैं अगले स्टेशन पर मैं अपने सीट पे चली जाऊँगी. जब मेरी उससे बातचीत हो रही थी तो एक बंगाली भाई बनियान धोती पहने हुए वो बाथरूम के लिए आया
जी.
और उसने मुझे भी देखा और माता को भी देखा. वापस आकर वो कहता है आप लोगों के पास सीट नहीं है
जी.
अच्छा मैंने कहा जी बहन जी के पास तो है लेकिन टीटी नहीं है, मेरे पास नहीं है. कहता आप आओ आओ मेरे साथ. अच्छा वो मुझे अपने साथ ले गया. वो रेलवे का कोई टीचर था
जी.
और ऑन ट्रांसफ़र था और उसकी अलीगढ़ वगैरह कहीं ट्रांसफ़र हो रही थी और उसके 9 टिकट थे, रिजर्वेशन थे, बच्चे भी थे, पूरा परिवार ट्रांसफ़र हो रहा था
जी.
तो मुझे ले गया. उसने अपने 2 बच्चों को इकट्ठे सुला दिया ऊपर और मुझे लोअर बर्थ दे दी कि आप यहाँ लेट जाओ. तो मेरा किराया भी नहीं लगा
जी.
रिजर्वेशन का. और आप देखिए उस मौके पर बाबा ने मुझे कैसे सीट दिलाई. मुझे फिर आंसू आए कि देखो बाबा अपने बच्चों को कोई भी परिस्थिति हो वो नियम भी पूरे निभाता कि तुम मादर से मिल के आओ
जी.
ऐसा नहीं कि चलो शरीर नहीं छोड़ना तो नहीं, तुम्हारा उधर से आ ही रहे हो. तो बाबा ने मुझे ये भी कहा, वो काम भी हो गया, ये काम भी हो गया, थोड़ा मुझे पहले से बता भी दिया ऐसा कुछ खतरा नहीं है, क्योंकि होता तो फिर बाबा खुद ही कह देता यहाँ जाओ. इतने तक समझिए बाबा हमारा ध्यान.
तो भाई साहब आपको क्या लगता है उस व्यक्ति ने आप में क्या देखा होगा, बैच देखा या
ना? कुछ नहीं, उसने ये देखा, उसने लेडी के ऊपर तरस खाया एक्चुअली. तो
जी.
उसने लेडी था उसके साथ बच्चा था, उसने समझा कि ये बेचारे बिना रिजर्वेशन के हैं, मेरे पास तो इतने गवर्नमेंट के ट्रांसफ़र है तो खूब हर एक व्यक्ति को एक एक सीट दी हुई है, बच्चों को भी दी हुई है, तो मैं इनको ऐसे ऐसे करके ले जाऊंगा. तो लेकिन युक्ति ड्रामा में ऐसी बनी हुई थी कि अगर वो लेडी ना होती शायद मेरे से पूछता भी नहीं
जी.
ये भी उसके साथ बच्चा था लेकिन वो ड्रामा और लेडी के पास रिजर्वेशन था, ये सारा जोड़ करके जो हमारे ओम प्रकाश भाई जी नहीं कर सके
जी.
बहुत कोशिश किया, हो ही नहीं सकता था, वो बाबा ने करवाया. इसको मैं क्या कहूँगा?
बिल्कुल भाई साहब.
हाँ
बिल्कुल.
उसके कहने पर चलो तो आपको वो ऐसे फूल की तरह रखेगा.
तो बाबा हमें जो डायरेक्शन देते हैं उसके आगे का रास्ता भी बाबा ने खुद ही तैयार किया हुआ होता है, हमें केवल चलते रहना है उसके ऊपर.
यानी बाबा कहते हैं मैं हूँ बीज
जी.
कल्प वृक्ष का बीज हूँ, इस सृष्टि का बीज हूँ। तो जैसे बीज के अंदर सारे वृक्ष समाया होता
जी।
और कोई भी चीज़ बीज से बाहर नहीं है, चाहे वो 5 साल बाद भी कोई पत्ता निकलेगा तो वो भी बीज में, तो उसको प्री नॉलेज रहता है हर चीज़ का। इसलिए बीज जहाँ चाहे जो भी इंटरवेंशन है वो कर सकता है।
तो और भाई साहब, बाबा ने आपको कहाँ कहाँ ऐसे मदद की, जैसे आपने बताया छोटी छोटी बातों में, जिसको कई बार हमारे साथ में होता है लेकिन हम उसको कई बार एक्नॉलेज नहीं कर पाते कि ये बाप दादा की मदद है। तो ऐसे भी आपको कोई और किस्से याद आते हैं जिसमें बाप दादा ने आपको इस प्रकार से मदद की?
नहीं नहीं ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैंने आपको जो मुझे इस वक्त याद आ रहे हैं कि इतने ईयर्स में 19-20 भी हुआ
जी।
लेकिन बाबा ने कभी भी मुझे अनकंफर्टेबल रखा हो, या मैं खड़े होकर ट्रेन में गया हूँ या बैठ, नहीं नहीं हुआ, अनेक बार ऐसा हुआ
जी। तो भाई साहब, ये जैसे आपने बताया कि छोटी छोटी बातों में बाबा ने मदद की, ऐसे ही आपने बहुत बड़े बड़े यज्ञ के कार्य भी किए हैं। हमने देखा स्टैम्प बनना है, या ओम शांति भवन का सीमेंट बका है या कंस्ट्रक्शन रुक गया, इतने सारे VIPs की सेवा, आप पॉलिटिशियन विंग के चेयरपर्सन हैं वर्तमान समय, तो शुरुआत से आपने इतने दिल्ली में होते हुए सबकी सेवा की है। ऐसे ही याद आता है कि जैसे प्रेसिडेंट आए, ज्ञानी जयल सिंह जी आए, तो ऐसे ही आर वेंकट रमन जी भी जब वाइस प्रेसिडेंट थे तो वो भी माउंट आबू आए थे।
हाँ।
तो उसके लिए भी बाबा ने आपको निमित्त बनवाया, तो वो कार्य बाबा ने कैसे करवाया?
देखिए ये बाबा का यज्ञ है, बाबा को पहले से ही पता है इस यज्ञ को कैसे कैसे आगे बढ़ना है
जी।
और बाबा हमेशा कहते थे कि कोई माइक हो, अर्थात कोई गणमान्य व्यक्ति हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, जिसको हम VIP कहते हैं
जी।
तो बाबा कहते हैं जब वो आएंगे तो एक तो संस्था की मान्यताओं को स्वीकृति मिलेगी और दूसरे उनको आने से देखकर बहुत अनेक लोगों के लिए आने का दरवाज़ा खुल जाता
जी।
क्योंकि ये बिल्कुल नया ज्ञान है, इसकी सारी बातें ही नई और निराली हैं। तो उन मौक़ों पर, ये 1985 या 86 की बात है वेंकट रमन जी की
जी,
तो उन मौक़ों पर ऐसे लोगों के माउंट आबू आने के, जहाँ के आप समझिए कि उस वक़्त माध्यम भी बहुत कम थे आने के, ट्रेन चलती थी तो 18-18 घंटे चलती थी, एयरपोर्ट तो था ही नहीं आदि आदि, तो उस वक़्त बाबा ने इन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े VIPs हैं उनको भेजा था। तो वेंकट रमन जी उस समय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे।
तो उनसे आपका संपर्क पहले से था भाई साहब, या कोई माध्यम बना, कोई निमित्त बना?
हाँ, अब देखिए दिल्ली में हम उनसे मिलते थे
जी।
पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, हम उनके जैसे अन्य व्यक्तियों से सेवा करने जाते थे, इससे ज़्यादा हमारा उनका इतना संपर्क नहीं था कि वो हम उनको कहें आप माउंट आबू चलो और चले, इसलिए तो बहुत गहरा संपर्क चाहिए ना
जी,
और संस्था की मान्यता चाहिए। तो बाबा ने इसके निमित्त एक कोई व्यक्ति रखा हुआ था, फैसला हमने किया कि वेंकट रमन जी को माउंट आबू लाना है। वो व्यक्ति थे उनके प्राइवेट सेक्रेटरी, उनका नाम था पृथ्वी सिंह। तो ये पृथ्वी सिंह जी निमित्त बने वेंकट रमन जी को माउंट आबू लाने के। ये स्वयं भी बहुत बड़े ऑफिसर थे
जी।
और एक समय पर ब्राज़ील में भारत के राजदूत थे। इनके साथ जो लगते हैं ना, बड़े एक्सपीरियंस लोग लगते हैं
जी।
तो उनके पर्सनल लाइफ में कोई ट्रेजेडी हुई थी, उन्होंने हमें बताया था बाद में कि यंग एज में वो उनकी पत्नी की डेथ हो गई थी। और फिर शायद मुझे याद है उनके बच्चे की भी कुछ खास ट्रेजेडी उनके साथ हुई थी
जी।
इसलिए उनको दुनिया से वैराग था लगभग, जैसे होता है, और वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो गए थे कि आखिर ये क्या है, ऐसा होता है ना
जी।
तो जब हमने वेंकट रमन जी के वहाँ कांटेक्ट किया तो पृथ्वी सिंह जी थे, उन्होंने सुना तो वो निमित्त बने कि क्यों ना साहब माउंट आबू जाएंगे, मैं भी चले जाऊँगा। इस तरह से उन्होंने उनसे स्वीकृति दिला दी एक प्रकार से
जी।
इसलिए वेंकट रमन जी और उनकी पत्नी दोनों का आना माउंट आबू में हुआ। अच्छा, अब हुआ ये कि हर मौके पर हमें पृथ्वी सिंह जी ने ही मदद किया।
अच्छा,
हेलीकॉप्टर से आते हैं, औरतों की जगह नहीं, वहाँ पोलो ग्राउंड है जैसे जैल सिंह जी आए थे
जी।
तो माउंट आबू में आने का वीआईपी का एक ही तरीका है, हेलीपैड से आते हैं और दो तीन हेलीकॉप्टर आते हैं। अच्छा, अब जब वो हेलीकॉप्टर से उतरे तो उस वक़्त उनका चार्ज जो होता है वो कलेक्टर के पास हो जाता
जी।
कलेक्टर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट
जी।
तो कलेक्टर वहाँ एक लेडी थी और बहुत सख्त स्वभाव की थी और उन्होंने उस उनके लिए प्रबंध सारा किया हुआ था अपने हिसाब से
हेलीपैड पर जब वो आए।
नहीं, वो टोटल
टोटल
हाँ, तो उन्होंने क्या किया हुआ था कि उनका कैसे ले जाना है, क्या रिसेप्शन है, जो उनका प्रोटोकॉल होता है किया हुआ था। अब वो उतरे तो वेंकट रमन जी के लिए अलग कार थी, उनकी पत्नी के लिए अलग कार थी, ऐसा सिस्टम होता है, बाकी ऑफिसर वगैरह होते हैं
जी।
तो हमने सोचा था कि दादी गुलजार
जी
वेंकट रमन जी के साथ जाएं, तो कलेक्टर ने अलाउ नहीं किया, तो हमने पृथ्वी सिंह जी को कहा, तो पृथ्वी सिंह जी ने कहा नहीं ये जाएंगी इनको, तो दादी गुलजार को वेंकट रमन जी के साथ थोड़ा मिलना जुलना हो जाता, बिठाया गया,
थोड़ा ज्ञान सुनाएंगे रास्ते में थोड़ा सा।
फिर क्या हुआ कि कलेक्टर ने जो रूट बनाया हुआ था वो ऐसा बनाया हुआ था, लंबा रूट था, सजाया हुआ था और उसमें सर्किट हाउस पड़ता था
जी।
तो सर्किट हाउस को कलेक्टर ने एक वाइस प्रेसिडेंट के आमद के तौर पर अच्छा बनाया हुआ था, उनका ख्याल था यहाँ उतरेंगे, गवर्नमेंट के गेस्ट हैं, उतरेंगे और यहाँ फ्रेश होंगे, नाश्ता वास्ता करेंगे फिर जाएंगे। और पृथ्वी सिंह ने कहा कि साहब का नाश्ता तो आप आश्रम में ही होगा।
अच्छा।
तो वो दूसरे रूट से उनको ले आए, सारे मोटर कैर को,
तो वो चिढ़ गई होंगी।
हाँ, वो ले आए और वहाँ आश्रम में उनको ले गए
जी।
तो कलेक्टर ने उसको, वो कलेक्टर तो पावरफुल होता है, वो अपनी जगह पावरफुल, तो कलेक्टर ने कहा कि आपने देखी हमने सारा अरेंजमेंट किया हुआ, डेकोरेशन किया हुआ, उनके लिए स्थान बनाया, उनको वहाँ दो मिनट तो रुकते, तो आप तो इनके इस रास्ते से लाया। उसने कहा जो मैंने किया वो ठीक है, वो चुप हो गई बेचारी।
तो उन्होंने उसके बाद में फिर थोड़ा चिढ़े तो होंगे संस्था से।
वो चिढ़े कुछ भी करें, ऑफिसर्स में ये होता है, हर एक की पावर होती है ना
जी।
आम पीएस करते नहीं, वो कलेक्टर के कहने पर ही चलते हैं, क्योंकि उनको पता है कोई भी डेविएशन करेंगे कुछ हो जाएगा तो कलेक्टर विल से आपने रॉन्ग रूट लिया
जी,
है ना
जी।
अच्छा, उस रूट पे वो ट्रैफिक रोक के रखते हैं, सब कुछ करते हैं, और ये रूट तो नॉर्मल होता है, लेकिन उसने किया
जी।
क्योंकि उसके अंदर भावना थी, स्पिरिचुअल संस्था। अच्छा, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह हुआ, तो उसके बाद स्टेज पर आना था, तो ओम शांति भवन की स्टेज पर उनको वेंकट रमन जी को आना था, तो वहाँ भी बहुत सख्त प्रबंध था, सिक्योरिटी थी, सब कुछ था
जी।
वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं,
तो ये किस प्रोग्राम के निमित्त था भाई साहब?
बस उनको इनवाइट किया गया
तो उनके लिए खास प्रोग्राम
था, उनका उनको जैसे बोलना तो था ना
जी।
तो अब वो आए तो वहाँ बैठ गए वो। अच्छा, दादी जी बैठ गए
जी।
अब अंकल स्टीव नारायण थे, आप जानते हैं
हाँ जी।
जो ज्ञाना के वाइस प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने उसको छोड़कर अपने ऑप्शन किया था कि मैं इंडिया में एम्बेसडर बनूंगा
जी।
इंडिया में वो ज्ञाना के भारत, श्रीलंका और शायद बर्मा या कहीं के कंबाइंड एम्बेसडर थे, ब्रह्मा कुमार थे, और एक फर्स्ट इतने हाई ऑफिशियल फॉरेनर ब्रह्मा कुमार थे वो, तो उन दिनों वहाँ आए हुए थे। तो हम सोच रहे थे कि उनको भी स्टेज पर बैठाएं, ऑनर करें, वेंकट रमन जी के साथ बैठे, और वो इंग्लिश ही बोलते थे, वेंकट रमन जी भी इंग्लिश ही ज़्यादा बोलते थे, तो कलेक्टर ने मना कर दिया, नहीं जो मैंने प्रोग्राम दिया हुआ इसके अनुसार ही बैठेंगे।
तो यहाँ भी बाबा ने मदद की,
हम फिर पृथ्वी सिंह जी के पास गए, पृथ्वी सिंह ने कहा बुलाइए उनको, और पृथ्वी सिंह जी ने उनको वेंकट रमन जी के इस तरफ दादी ने बिठा दिया, तो यानी टोटल प्रोग्राम में पृथ्वी सिंह जी हमारे काम आए, और उसके बाद तो आप समझिए कि वेंकट रमन जी के साथ ब्रह्मा कुमारी का इतना गहरा संबंध हो गया
जी
कि वो प्रेसिडेंट बन गए। तो जब तक टिल हिज लास्ट मोमेंट, वो काफ़ी लंबी आयु उन्होंने पाई थी
जी।
और वो ब्रह्मा कुमारी के सहयोगी रहे, ओम शांति रिट्रीट सेंटर जो दिल्ली में बना है उसके वो पैटर्न बने और यहाँ आके रहे ओम शांति रिट्रीट सेंटर में, फैमिली के साथ एक रात रहे जबकि अंडर कंस्ट्रक्शन था, उस प्रोग्राम में भी वो आए और अनेक बार जो है उन्होंने बहुत हमें इतना कोऑपरेट किया, हम लगभग दूसरे तीसरे महीने उनसे मिलने जाते थे और वो बड़े फ्रेंडली तौर पे बात करते थे, यानी वो समझते थे ब्रह्मा कुमारी मेरे घर के, कहते थे मेरे पास जो लोग मिलने आते हैं किसी न किसी काम से आते हैं, आप ही सिर्फ हो जो मेरे से वैसे मिलने आते हो, उनके ये शब्द थे। फिर उनकी आयु बढ़ती जा रही थी तो कहते हैं कि लोग कहते हैं अब और लंबा जियो, वास्तव में अब मैं इस शरीर से तंग हूँ, ऐसी ऐसी बातें किया करते थे। और फिर उनकी पत्नी का देहांत हो गया तो अब उनको, साउथ इंडियन थे
जी।
तो उन्होंने हमें कहा कि आप कोई, उनकी बेटी थी, कि आप कोई ऐसा ब्रह्मा कुमार दो जो साहब के लिए भोजन बनाए, यहाँ तक कहा। और
इतना समीप का बाबा ने संबंध करवा दिया।
और हम नॉर्मली ऐसा काम किसी के लिए नहीं करते
जी।
और रिलेशनशिप ठीक रहे, हमारा एक ब्रह्मा कुमार जाए और उसके घर में उसके नियम होते हैं, उसको तनख्वाह दी जाती है, अलग कमरा दिया जाता है, लेकिन उसकी मुरली मिस होती है ना
जी।
फिर भी उसको काफ़ी फैसिलिटी देते हैं। फिर भी हमने एक अपना मादुराय का भाई था, मद्रासी था
जी।
तो उसको हमने कहा भैया तू बुज़ुर्ग आदमी है, इनकी सेवा कर, मुरली अलग से सुन लिया कर। वो मान गया, हमने उनको उनके पास रखा। अच्छा अब देखिए क्या हुआ,
ये भी बहुत बड़ी बात है भाई साहब, संस्था की तरफ
हम आज तक कहीं नहीं करते
जी।
अब हमने क्या किया, एक हमारा दूसरा भाई है जो साउथ इंडियन डिशेज ज़्यादा बनाने जानता है, ये भाई तो हलवाई की दुकान पर, वहाँ है ना मदुरई में मंदिर है तो वहाँ सेवा करता था, थोड़ा बहुत मद्रासी खाना बनाता होगा, तो हमने सोचा इनके लिए ट्रेन कर दें, तो हम दोनों को भेज दिया उनके घर। अच्छा अब उनका प्रोटोकॉल होता है कि जिसको बुलाया उसी को रखना है, हालांकि हमने तो उसको हेल्प, तो उसकी बेटी ने कहा ये तो लॉ नहीं है, आपने ऐसे भेज दिया, हमने कहा हमने तो सिखाने के लिए भेजा। फिर उसने उसको कहा साहब का खाना अलग बनेगा, पर वो लड़का थोड़ा घबरा गया। तो फिर हमने वेंकट रमन जी को रिक्वेस्ट किया कि हमारा आदमी चलेगा नहीं। अच्छा उन्होंने कहा ठीक है। अब उसके बाद वो सोचने लगे कि ब्रह्मा कुमारी ने मेरे लिए इतनी कोशिश भी की, नहीं हुआ, तो बीच में इसमें हंसते थे कि ब्रह्मा कुमारी आप लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, ऐसे ऐसे करते थे
जी।
लेकिन अंत तक मतलब उनका प्रेसिडेंट के तौर पर भी उनका सपोर्ट रहा
जी। और प्रीति सिंह जी का क्या हुआ भाई साहब, वो भी संपर्क में रहे एंड तक?
प्रीति सिंह जी तो उस वक्त ही संपर्क में रहे, उसके बाद मेरा ख्याल नहीं, उनसे वो हट गए थे और किसी जगह चले गए थे।
तो भाई साहब कहीं ना कहीं बाप दादा मदद भी करते हैं और उसके बाद में संबंध भी बाप दादा जो है उसकी भी केयर करते हैं कि सिर्फ सेवा का संबंध नहीं लेकिन आत्मा को सच में प्राप्ति भी हो।
उनको मेडिटेशन कराते थे जब भी उनके घर जाते थे
जी।
मेडिटेशन कराते थे और हम भी ये ध्यान रखते हैं कि हमारा कनेक्शन किसी के साथ भी है तो सिर्फ एक जन्म का नहीं है, मतलब का नहीं है, क्योंकि वह वाइस प्रेसिडेंट तो आ जाए, नहीं, इसी आत्मा ने अगले कल्प भी इन्हीं संस्कारों के साथ हमारे नज़दीक आना
जी। और जो वो हमसे हड्डी सुख लेंगे उस आधार पे ही वो फिर द्वापर से कहीं ना कहीं संपर्क में रहेंगे या भक्त आत्माओं के रूप में या कैसे भी करके,
ये है
जी। तो हमने देखा किस तरह से बाप दादा ने हमें जो नम्रता सिखाई है, हमें जो बाप दादा ने अपने नियम बताए हैं, श्रीमद के आधार पे बाप दादा ही आगे के रास्ते खोलते हैं और छोटी बात हो या बड़ी बात हो हमें एक्नॉलेजमेंट करना चाहिए कि बाप दादा ने हमें मदद दी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को निमित्त बना करके बाप दादा ने हमें उस समय पे उस सिचुएशन में पार उतारा। तो ऐसे ही अनुभव हम भाई साहब के द्वारा और भी जानते रहेंगे, तब तक के लिए ओम शांति।